एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने न जाने कितने लोगों को सोचने पर मजबूर किया है 20वीं सदी से लेकर अब तक। यह है सी.एस. लुईस की जाने मानी किताब मात्र ईसाई धर्म या मेयर क्रिश्चियनिटी।
हाँ, और कमाल की बात यह है कि यह आज भी उतनी ही रेलेवेंट लगती है ना?
बिल्कुल, खासकर इस दौर में जब लोग अक्सर सोचते हैं कि भाई तर्क अपनी जगह है और विश्वास वो बिल्कुल अलग चीज है। लुईस ने जैसे एक पुल बनाने की कोशिश की इन दोनों के बीच।
सही कहा।
और ये किताब सिर्फ मतलब धार्मिक लोगों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी के बड़े सवालों पर, जैसे सही गलत क्या है, ईश्वर है या नहीं, दुनिया में इतनी तकलीफ क्यों है, इन पर तर्क के साथ सोचना चाहता है।
बिल्कुल, तो चलिए शुरू करने से पहले थोड़ा सा उस शख्स के बारे में जानते हैं जिन्होंने ये विचार हमारे सामने रखे। सी.एस. लुईस, पूरा नाम क्लाइव स्टेपल्स लुईस, 1898 में पैदा हुए और 1963 में उनका देहांत हुआ। ब्रिटिश लेखक थे और अकेडमिक दुनिया में भी बड़ा नाम था। ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ाया उन्होंने।
हाँ, उनका मुख्य विषय तो मध्यकालीन और पुनर्जागरण साहित्य था।
जी,
पर मजे की बात यह है कि दुनिया उन्हें ज्यादातर उनकी पॉपुलर किताबों के लिए जानती है, चाहे वो बच्चों के लिए नार्निया की कहानियां हों या फिर ये किताब मात्र ईसाई धर्म।
और लुईस की एक बहुत ही अनोखी बात है उनका अपना सफर। वो अपनी जवानी में पक्के नास्तिक थे, मानते थे कि धर्म वगैरह सब मन बहलाने की बातें।
और उनका बदलना भी कोई अचानक नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि बस एक दिन एहसास हुआ, नहीं, सालों की दिमागी कश्मकश थी, दोस्तों से तीखी बहस होती थी। आपको पता है, J.R.R. टोल्किन जैसे लोग उनके दोस्त थे, और फिर सबूतों को बारीकी से जांचा परखा। हाँ, इसी वजह से वो शक करने वालों की बात इतनी अच्छी तरह समझ पाते थे।
बिल्कुल,
उनकी दलीलें, उनकी मुश्किलें, वो सब समझते थे। वो जानते थे कि शक करना कैसा लगता है, इसीलिए वो जवाब भी इतने संजीदगी से देते हैं।
एकदम, और यही उनकी लेखनी को खास बनाता है। वो किसी प्रीचर या थियोलॉजियन की तरह नहीं लिखते,
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि एक बहुत पढ़े लिखे, ईमानदार, लॉजिकल इंसान की तरह। और भाषा बहुत साफ सीधी, रोजमर्रा की मिसालें देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई समझदार दोस्त आपसे बात कर रहा हो।
सही। तो अब आते हैं किताब पर, मात्र ईसाई धर्म। ये मात्र यानी मिया शब्द का क्या मतलब है यहाँ? क्या मकसद था लुईस का?
देखिए, लुईस का मकसद किसी एक खास क्रिश्चियन सेक्ट या डिनोमिनेशन की तरफदारी करना नहीं था। वो उन बुनियादी, एकदम कोर बिलीव्स की बात कर रहे थे जो लगभग सभी ईसाई पूरे इतिहास में मानते आए हैं। इसी को वो मात्र या साझा ईसाई धर्म कहते हैं।
अच्छा, जैसे जैसे एक बड़े घर में घुसते ही एक हॉल होता है।
हाँ बिल्कुल, एक दालान जहां से फिर अलग अलग कमरों के दरवाजे खुलते हैं। लुईस का काम था लोगों को उस दालान तक लाना, उसके बाद वो अपना कमरा यानी अपना संप्रदाय चुन सकते थे।
और ये किताब आई कैसे? मैंने सुना ये रेडियो टॉक्स पर बेस्ड है।
हाँ, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन पर बम गिर रहे थे, माहौल बहुत अनिश्चितता और दुख का था।
बहुत मुश्किल दौर था वो।
बिल्कुल, तो BBC ने लुईस को रेडियो पर बात करने के लिए बुलाया और उनकी आवाज, उनके तर्क इतने असरदार थे कि वो बहुत पॉपुलर हो गए। बाद में उन्हीं टॉक्स को एडिट करके ये किताब बनी, इसीलिए इसकी भाषा इतनी सीधी, बातचीत जैसी लगती है।
अच्छा, तो अब आते हैं इसके मुख्य तर्क पर। लुईस शुरुआत कहाँ से करते हैं?
वो एक बहुत ही आम अनुभव से शुरू करते हैं। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं सही और गलत की एक समझ होती है ना?
हाँ, बच्चे भी लड़ते हुए कहते हैं ये फेयर नहीं है, या तुमने प्रॉमिस किया था।
एग्जैक्टली, लुईस इसे कहते हैं मानव स्वभाव का नियम या लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। और फिर वो इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। पहले इस नियम का होना, फिर इसके पीछे कौन हो सकता है, और आखिर में यीशु मसीह के दावों तक। पूरी किताब जैसे एक लॉजिकल चेन है।
चलिए, तो इस चेन में थोड़ा और गहरे चलते हैं। किताब का पहला हिस्सा है सही और गलत, ब्रह्मांड के अर्थ की कुंजी। यहां लुईस इसी मानव स्वभाव के नियम पर जोर देते हैं।
हाँ, वो कहते हैं कि हम सब मानते हैं कि एक तरह का बिहेवियर सही है, दूसरा गलत। हमारे झगड़े, हमारी बहसें सब इसी बात पर टिके हैं कि कोई रूल है जिसका पालन होना चाहिए।
पर सवाल उठता है, क्या ये रूल सिर्फ हमें सिखाया गया है, या ये बस जीने की एक इंस्टिंक्ट है, जैसे अपनी जान बचाना?
लुईस इन सवालों को भी उठाते हैं। वो कहते हैं अगर ये सिर्फ इंस्टिंक्ट होती तो हम हमेशा अपनी जान बचाने वाली इंस्टिंक्ट को ही सही मानते,
है ना?
हाँ, लॉजिकल है।
जैसे सड़क पर लेफ्ट चलना।
लुइस करते हैं नहीं, क्योंकि जो बेसिक मोरालिटी है, जैसे ईमानदारी अच्छी है, धोखा बुरा है, बहादुरी अच्छी है, कायरता बुरी है, ये चीजें तो लगभग हर कल्चर में मिलती हैं, चाहे उनके रीति रिवाज कितने भी अलग क्यों न हो। तो ये नियम बनाया हुआ नहीं लगता, बल्कि जैसे डिस्कवर किया हुआ लगता है, जैसे मैथ्स के नियम। तो लुइस का निष्कर्ष है ये नैतिक नियम रियल है, वास्तविक है।
ठीक है, मान लिया ये नैतिक नियम है, तो फिर
इसके पीछे क्या है? यहीं पर लुइस दो मुख्य पॉसिबिलिटीज रखते हैं। एक मटीरियलिस्टिक व्यू, कि ये यूनिवर्स बस ऐसे ही है बाय चांस, इसका कोई गहरा मतलब नहीं, और हमारी सही गलत की फीलिंग भी बस दिमाग की केमिस्ट्री है।
और दूसरी?
दूसरी है रिलीजियस व्यू, कि इस यूनिवर्स के पीछे कोई माइंड, कोई इंटेलिजेंस, कोई कॉन्शियसनेस है। लुइस कहते हैं कि साइंस हमें बता सकता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, पर यह नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। ये नैतिक नियम हमें उस दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करता है कि शायद कोई रूल मेकर है।
और यही बात थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है ना?
बिल्कुल। लुइस कहते हैं कि अगर एक नैतिक नियम है और उसे बनाने वाला है, तो भाई हम सब मुश्किल में हैं।
क्यों?
क्योंकि हम सब जानते हैं कि नियम क्या है, और ये भी जानते हैं कि हम उसे लगातार तोड़ते हैं। कोई भी उस स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरता जिसकी हम दूसरों से उम्मीद करते हैं।
हाँ, ये बात तो है।
तो अगर हमें उस नियम बनाने वाले का सामना करना पड़े, तो हिसाब किताब शायद थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। और लुइस के मुताबिक ये एहसास ही क्रिश्चियनिटी की जरूरत को समझने का पहला कदम है।
ये तो हुई पहली किताब की बात, अब आते हैं दूसरी पर। ईसाई क्या मानते हैं, यहाँ क्या खास है?
यहाँ लुइस गॉड के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। वो दो मेन आइडियाज में फर्क करते हैं। एक है पैंथिज्म, मतलब ईश्वर और यूनिवर्स एक ही हैं और ईश्वर अच्छे बुरे से परे है।
और दूसरा?
दूसरा है थीज्म, जिसमें ईश्वर यूनिवर्स का क्रिएटर है, उससे अलग है और एक अच्छा पर्सनल बीइंग है, जैसा कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम मानते हैं। लुइस साफ करते हैं कि ईसाई धर्म थीस्टिक है।
लेकिन फिर वही बड़ा सवाल,
हाँ,
अगर ईश्वर अच्छा है, पावरफुल है, तो दुनिया में इतनी बुराई, इतनी तकलीफ क्यों है?
हाँ, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, और लुइस इसका सामना करते हैं। क्रिश्चियन व्यू, जैसा लुइस समझाते हैं, वो ये है कि एक पावरफुल स्पिरिचुअल बीइंग, जिसे शैतान कहते हैं, उसने गॉड के खिलाफ विद्रोह किया और दुनिया में बुराई ले आया, और फिर इंसानों ने भी अपनी फ्री विल से उस डार्क पावर का साथ दिया, जिससे दुनिया इस बिगड़ी हुई हालत में आ गई।
तो मतलब ये दुनिया एक तरह से दुश्मन के कब्जे वाला इलाका है।
हाँ, लुइस कुछ ऐसा ही कहते हैं, और ईश्वर का प्लान इसे वापस जीतने का एक तरह का इन्वेजन या रेस्क्यू मिशन है।
और इस रेस्क्यू मिशन का सेंटर कौन है?
यीशु मसीह। और यही लुइस अपना सबसे फेमस और शायद सबसे चौंकाने वाला तर्क देते हैं, जिसे ट्राइलेमा या त्रिधा कहते हैं।
हाँ, ये मैंने सुना है।
वो कहते हैं कि यीशु ने अपने बारे में जो दावे किए, जैसे पाप माफ करने का अधिकार, खुद को ईश्वर का बेटा कहना, जज बटाना, उन दावों को देखते हुए आप उन्हें सिर्फ एक महान नैतिक शिक्षक कहकर टाल नहीं सकते।
क्यों नहीं, बहुत लोग तो यही मानते।
लुइस का तर्क है, सोचिए अगर कोई आम इंसान ऐसी बातें कहे तो वो महान शिक्षक नहीं हो सकता, वो या तो झूठा होगा, जानबूझकर धोखा दे रहा होगा,
या फिर
वो पागल होगा, उसे पता ही नहीं कि वो क्या कह रहा है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि वो सचमुच वही हो जो वो दावा कर रहा था, यानी ईश्वर का पुत्र प्रभु।
बापरे।
लुइस कहते हैं हमें इन तीन में से चुनना होगा। यीशु को सिर्फ एक अच्छा इंसान मानने का जो कम्फर्टेबल ऑप्शन है, वो उन्होंने हमारे लिए छोड़ा ही नहीं, इस सोचने पर मजबूर करता है ना।
वाकई? तो फिर ईसाई मान्यता में यीशु की मौत का क्या मतलब था, सिर्फ शहादत?
नहीं, लुइस समझाते हैं कि ये सिर्फ शहादत नहीं थी, ये प्रायश्चित था, अटोनमेंट। हमने नैतिक नियम तोड़ा था, उसका कर्ज चुकाना था, लेकिन हम खुद ये कर्ज चुका नहीं सकते थे। तो यीशु, जो ईश्वर और इंसान दोनों थे, उन्होंने हमारे बदले वो कीमत चुकाई। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, पर लुइस इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। निचोड़ ये है कि हमें अपनी मुक्ति के लिए यीशु पर निर्भर होना पड़ता है, यही विश्वास का मतलब है। सिर्फ मान लेना नहीं, बल्कि भरोसा करना, निर्भर होना।
तो विश्वास के बाद क्या? किताब का तीसरा हिस्सा ईसाई व्यवहार पर है। क्या ये बस नियमों की लिस्ट है कि क्या करो क्या ना करो?
नहीं, लुइस यहाँ बहुत क्लियर है। ये नियम मानकर स्वर्ग कमाने की कोशिश नहीं है।
अच्छा।
बल्कि ये उस नई जिंदगी का नेचुरल नतीजा है जो विश्वास से शुरू होती है। वो नैतिकता समझाने के लिए जहाजों के बेड़े की मिसाल देते हैं।
जहाजों का बेड़ा? कैसे?
हाँ, वो कहते हैं एक बेड़े को ठीक से चलने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। एक, जहाज आपस में ना टकराएं, ये हुई सोशल मोरालिटी।
हाँ।
दो, हर जहाज खुद ठीक हालत में हो, ये हुई पर्सनल मोरालिटी यानी कैरेक्टर।
और तीसरा?
तीसरा, पूरा बेड़ा सही मंजिल की ओर जा रहा हो, ये हुआ जीवन का उद्देश्य। ईसाई नैतिकता इन तीनों पर ध्यान देती है।
इसमें किन खास बातों पर जोर दिया गया?
लुइस चार क्लासिक गुणों की बात करते हैं, विवेक, संयम, न्याय और धैर्य। लेकिन जिस चीज पर वो सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा जोर देते हैं, वो है अभिमान, प्राइड को सबसे बड़ा पाप मानना।
अभिमान, ईगो।
हाँ, उनका कहना है कि अभिमान सिर्फ खुद को पसंद करना नहीं है, ये स्वभाव से ही कंपेटिटिव है, दूसरों से बेहतर होने की चाहत। ये ईश्वर विरोधी है क्योंकि ये खुद को सेंटर में रखता है। इसका उल्टा है विनम्रता, ह्यूमिलिटी।
और प्रेम के बारे में क्या कहा है?
लुइस दान या अगापे लव की बात करते हैं। ये सिर्फ फीलिंग्स वाला प्यार नहीं है।
वो फिर क्या है?
ये दूसरों की भलाई के लिए इच्छा शक्ति से किया गया काम है, चाहे हमें वो इंसान पसंद हो या ना हो। इसी तरह वो होप यानी आशा को स्वर्ग की ऐसी गहरी इच्छा बताते हैं जो हमें इस दुनिया में बेहतर काम करने की ताकत देती है, न कि दुनिया से दूर ले जाती है।
इंटरेस्टिंग।
और विश्वास को वो क्षमता बताते हैं जिससे हम भावनाओं के उतार चढ़ाव के बावजूद तर्क और भरोसे पर टिके रहते हैं। और हाँ, वो क्षमा, शादी, सेक्सुअल मोरालिटी जैसे मुश्किल टॉपिक्स पर भी बहुत सीधी क्लियर बातें करते हैं।
अब आते हैं चौथी और शायद सबसे मुश्किल किताब पर, व्यक्तित्व से परे त्रित्व के सिद्धांत में पहले कदम। ये त्रित्व या ट्रिनिटी क्या चीज है भाई, और लुइस इसे कैसे समझाते हैं?
हाँ, ये हिस्सा थोड़ा गहरा है, सही कहा। लुइस यहाँ बनाने और जन्म देने में फर्क करते हैं।
बनाने और जन्म देने में?
हाँ, जैसे एक आर्टिस्ट मूर्ति बनाता है, वो उसके जैसी नहीं होती। लेकिन माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं जो उन्हीं की तरह इंसान होता है। लुइस कहते हैं कि ईश्वर ने हमें अपनी छवि में बनाया है।
लेकिन
ईशु ईश्वर के जन्मे पुत्र हैं, यानी वो ईश्वर की नेचर, उनका स्वभाव शेयर करते हैं।
अच्छा, और ये त्रित्व तीन ईश्वर हैं?
नहीं नहीं, लुइस समझाते हैं कि ईसाई मानते हैं कि ईश्वर एक ही है, लेकिन वो अकेला या स्टैटिक नहीं है। वो तीन व्यक्तियों, पिता, पुत्र यानी ईशु और पवित्र आत्मा में एक डायनामिक रिलेशनल लाइफ है।
ये समझना मुश्किल है।
हाँ, जैसे किसी 2D दुनिया वाले के लिए 3D क्यूब समझना। लुइस कहते हैं ये ईश्वर के अंदर प्रेम का एक दिव्य नृत्य है, ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ईश्वर की असलियत है।
और इसका हमारे लिए क्या मतलब है प्रैक्टिकली?
लुइस के मुताबिक ईसाई जीवन का अल्टीमेट गोल सिर्फ पापों की माफी पाना या अच्छे काम करना नहीं है,
तो क्या है?
बल्कि ईश्वर के इस त्रित्व वाले जीवन में शामिल होना है। जैसे कोई अच्छी बीमारी फैलती है ना,
अच्छी बीमारी,
हाँ, वैसे ही मसीह का जीवन हम में फैलता है। वो ऐसे गुड इन्फेक्शन कहते हैं, हम धीरे धीरे बदलते हैं।
पर ये बदलाव होता कैसे है?
लुइस एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं, हम शुरुआत में मसीह जैसा बनने का अभिनय करते हैं, प्रिटेंड करते हैं,
एक्टिंग।
हाँ, मतलब वो काम करते हैं जो सही है, भले हमारा मन ना कर रहा हो, जैसे बच्चे खेल खेल में बड़े बनते हैं। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि मसीह का जीवन हमारे अंदर काम कर रहा होता है, वो अभिनय असलियत बनने लगता है। लक्ष्य है छोटे मसीह बनना, या लुइस के शब्दों में नए मनुष्य, न्यू मैन बनना। ये इंसानियत का अगला कदम है, फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल।
तो कुल मिलाकर ये रास्ता आसान है या मुश्किल?
लुइस कहते हैं दोनों। एक तरह से बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें हमें अपना पूरा मैं, अपनी मर्जी सब ईश्वर को सौंपना पड़ता है, कुछ भी बचाकर नहीं रख सकते। लेकिन दूसरी तरह से ये आसान है, क्योंकि असली काम, हमें बदलने का काम वो ईश्वर खुद करते हैं, हमें बस कोऑपरेट करना है, सरेंडर करना है। ये सिर्फ रिफॉर्म नहीं है, ये रीबर्थ है।
वाह, काफी गहरी बातें हैं। अगर हमें इस पूरी चर्चा से कुछ मेन मैसेजेस निकालने हों तो वो क्या होंगे, की टेकअवेज?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे फंडामेंटल है लुइस का ये तर्क कि हम सबके अंदर की जो सही गलत की भावना है वो नैतिक नियम, वो महज सोशल कंडीशनिंग नहीं है,
हाँ,
बल्कि शायद किसी गहरी बाहरी सच्चाई की ओर इशारा करती है जो ईश्वर की तरफ ले जाती है। ये उनके पूरे आर्ग्यूमेंट की नींव है।
दूसरा, वो यीशु मसीह के दावों को लेकर जो चुनौती दी है, झूठा, पागल या प्रभु,
लायर, लूनेटिक और लॉर्ड,
हाँ, वो त्रिधा,
बिल्कुल।
ये हमें सतही जवाबों से आगे बढ़कर यीशु की आइडेंटिटी के बारे में सीरियसली सोचने पर मजबूर करता है। इसे इग्नोर करना मुश्किल है।
तीसरा, अभिमान को सबसे बड़े पाप के रूप में देखना, ये समझना कि असली बुराई अक्सर हमारी दूसरों से बेहतर दिखने की रेस में छुपी होती है।
ये बहुत प्रैक्टिकल बात है।
हाँ, हमारे पर्सनल और सोशल लाइफ में बहुत रेलिवेंट है और विनम्रता इसकी दवा है।
चौथा, ये आइडिया कि ईसाई जीवन का लक्ष्य सिर्फ थोड़ा बेहतर बनना नहीं बल्कि पूरी तरह बदलना है, एक नया इंसान बनना, ईश्वर के साथ एक नए रिश्ते में आना, ये सिर्फ बिहेवियर बदलने से कहीं ज्यादा गहरा है।
और पांचवा,
विश्वास, आशा और प्रेम, खासकर वो अगापे वाला प्रेम, को सिर्फ भावनाओं के तौर पर नहीं बल्कि विल पावर और तर्क पर आधारित गुणों के रूप में देखना। विश्वास वो है जो फीलिंग्स बदलने पर भी टिका रहे, आशा फ्यूचर की सर्टिनिटी से आती है और प्रेम एक चॉइस है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया है।
लुईस की किताब में सचमुच ऐसे वाक्य भरे पड़े हैं जो रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं। कुछ यादगार विचार शेयर करें।
जरूर। पहला तो वही त्रिधा वाला, एक व्यक्ति जो केवल एक मनुष्य था और उसने यीशु जैसी बातें कहीं, वो एक महान नैतिक शिक्षक नहीं होगा। वो या तो एक पागल होगा या फिर नरक का शैतान होगा। आपको अपना चुनाव करना होगा, लेकिन आइए हम उसे एक महान मानव शिक्षक कहने की संरक्षणवादी बकवास ना करें। उसने ये विकल्प हमारे लिए खुला नहीं छोड़ा है। ये आपको हिला देता है थोड़ा।
हाँ, दूसरा, अभिमान पर। अभिमान को कुछ पाने में आनंद नहीं मिलता, केवल अगले आदमी से ज्यादा पाने में मिलता है। ये तुलना है जो आपको अभिमानी बनाती है, बाकी लोगों से ऊपर होने का सुख। एक बार प्रतिस्पर्धा का तत्व चला गया तो अभिमान चला गया। कितनी सटीक बात है। मतलब अभिमान का मजा दूसरों को कमतर दिखाने में है मिलेगा।
ये सुनने में पैराडॉक्सिकल लगता है, पर शायद मतलब ये है कि जब हमारी अल्टीमेट होप इस दुनिया से परे होती है, तभी हम इस दुनिया की चीजों का सही मजा ले पाते हैं और यहाँ बेहतर काम कर पाते हैं।
और चौथा, ईश्वर पर हमारी निर्भरता के बारे में। ईश्वर ने मानव मशीन को स्वयं पर चलने के लिए डिजाइन किया है। वह स्वयं वह ईंधन है जिसे हमारी आत्माओं को जलाने के लिए डिजाइन किया गया था, कोई दूसरा नहीं है। ये मेटाफर बताता है कि सच्ची सेटिस्फैक्शन और पर्पस शायद तभी मिलता है जब हम उस पावर से कनेक्ट होते हैं जिसके लिए हम बने हैं।
इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब हो सकता है? मतलब ठीक है, फिलॉसफी है, थियोलॉजी है, पर डे टू डे लाइफ में
मुझे लगता है काफी मतलब है। पहला तो नैतिक फैसले लेने में, जब कन्फ्यूजन हो तो अपने अंदर की उस आवाज को सुनना जिसे लुईस मानव स्वभाव का नियम कहते हैं, पूछना कि फेयरनेस क्या मांगती है, डीसेंसी क्या है।
और रिश्तों में भी अभिमान को पहचानना, अपने अंदर भी और दूसरों से डील करते वक्त भी।
हाँ,
माफ करने की प्रैक्टिस करना, इसे सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक डिसीजन मानना, और अगापे लव यानी दूसरों की भलाई के लिए काम करने की कोशिश करना, चाहे दिल माने या न माने, ये चीजें रिश्तों को बदल सकती हैं।
बिल्कुल। साथ ही इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, ये किताब खुद सिखाती है कि कैसे ईमानदारी से अपनी मान्यताओं को जांचा जाए, दूसरों के तर्कों को सम्मान से सुना जाए और ये माना जाए कि भाई हम सब कुछ नहीं जानते।
और शायद सबसे बड़ा, लाइफ में पर्पस खोजना और निराशा से निपटना। अगर लुईस सही हैं कि हमारी असली खुशी ईश्वर के साथ रिश्ते में है, तो ये हमारी प्रायोरिटीज बदल सकता है। और वो एक्टिंग वाली बात, अच्छी आदतें डालने की कोशिश करना, ये सोच करके धीरे धीरे ये हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएंगी। ये कैरेक्टर बनाने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका लगता है।
तो इस काफी गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली चर्चा के अंत में मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि लुईस ने विश्वास को तर्क और बुद्धि के दायरे में कितनी मजबूती से रखा है। उन्होंने दिखाया कि विश्वास आंख बंद करके कूदना जरूरी नहीं बल्कि सोच समझकर उठाया गया कदम भी हो सकता है।
और मेरे लिए वो बदलाव वाला आइडिया सबसे पावरफुल है। ये सिर्फ बुरी आदतें छोड़ने या थोड़ा बेहतर बनने की बात नहीं है, ये ईश्वर की मदद से एक पूरी तरह से नया प्राणी, एक नई रचना बनने की संभावना है। इसमें एक बहुत गहरी होप है।
और सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद विचार कर सकते हैं। क्या हमारे अंदर सही और गलत की ये जो गहरी लगभग इंस्टिंक्टिव फीलिंग है, उसे किसी सुपरनेचुरल सोर्स के बिना सिर्फ एवोल्यूशन या सोशल लर्निंग से पूरी तरह समझाया जा सकता है? लुईस के तर्क हमें सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।